मैंने कहा सही बात है, पर भगवान की कोई भी अवतारों की जो लीला है उसे समझने के लिए थोड़ा लीला और सिद्धांत दोनों का जो मिश्रण है वो बहुत जरूरी है। भगवान की लीला हम क्यों सुनते हैं? पहली बात तो ये है, मनुष्य जीवन है अपने अस्तित्व की शुद्धिकरण के लिए, और ये शुद्धिकरण बहुत मधुर तरीके से भगवान की लीला श्रवण से होता है। श्रीन्वताम सुगता कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सिरत्सताम। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान के कथा का श्रवण करने से पुण्य श्रवण कीर्तन, इनका श्रवण और कीर्तन अपने आप में ही सबसे श्रेष्ठ पुण्य कार्य है। और हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय में जितने भी हमारे अभद्र हैं विधुनोति धुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुहृद सताम, भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, जब वो देखते हैं कि हम उनके बारे में सुनने के लिए आतुर हैं तो वो अपने हृदय से अंदर से वो अपने आप को शुद्ध कर देते हैं हमको। दूसरी बात है, अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान की नाम रूप गुण लीला इत्यादि में मग्न करने में कृष्ण कथा जो है बहुत ही अनुकूल है। और परीक्षित महाराज के प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि किस प्रकार जब परीक्षित महाराज को शाप मिला और वो गंगा के तट पर आकर बैठे, तब वो सुत गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तम ईशे, के तम उपयातम, आप ये जान लीजिए कि मैं पूर्ण रूप से मैं आश्रय लिया हूं आप लोगों का। प्रतियंतु विप्रा, हे ब्राह्मणों, हे ऋषिगण जो आप लोग यहां एकत्रित हुए हो, आप ये जान लीजिए कि मैं पूर्ण रूप से आपके शरण आया हूं। तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा द्विजोपसृष्ट कुहक तक्षको वा, गंगा च देवी, और गंगा जी भी मुझे इस तरह से स्वीकार करे, धृतचित्तम ईशे, क्योंकि मैं भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में धारण किया हूं। धृतचित्तम ईशे, और जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को उनके नाम रूप गुण लीला द्वारा हृदय में धारण कर लेता है उसका क्या होता है? दशत्वलम, बोले अभी जो कुहक तक्षको वा, जो ब्राह्मण श्रृंगी के श्राप से जो भी आने वाला है, वो सांप है या जो भी अद्भुत चीज आके कुछ काटने वाला है, वो अपना काटने दो। गायत विष्णु गाथा, आप ये जो कथा सुना रहे हैं वो कथा मुझे सुनाते रहिए, आप कृपया इसे चालू रखिए। तो इस तरह से ये दूसरा लाभ है, न केवल हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है बल्कि कृष्ण कथा या हरि कथा से समय का प्रभाव और मृत्यु का भय ये दोनों चले जाते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भय जो है हमारे हृदय से काफी हद तक चली जाती है, जिस हद तक हम कृष्ण कथा को नित्य श्रवण करते हैं। तीसरा जो लाभ है नियमित रूप से भगवान के कथा का श्रवण करना, वो है हृदय की संतुष्टि। संतुष्टि हर एक व्यक्ति चाहता है, पर वो हृदय की संतुष्टि जो है वो कृष्ण कथा से, हरि कथा से उपलब्ध होती है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता येन आत्मा सुप्रसिद्धति। अहैतुकी, जिस हद तक ये श्रवण हमारा बड़े ध्यान पूर्वक और कोई हेतु नहीं, सिर्फ सुनने की इच्छा, शुद्ध बस भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा और हमारी शुद्धिकरण, इस हेतु से श्रवण करते हैं, तो उस हद तक न शोचति न कांक्षति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न चित्त होने के कारण शोक नहीं है और कोई दूसरी आकांक्षा नहीं, यानी संतुष्टि। भगवान की कृपा के हम पात्र हैं, इतना ही हमें संतुष्टि आ जाती है। और चौथा लाभ जो हरि कथा से होता है वो है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम्। अपने आप हृदय में परिवर्तन होता है। आप बोलोगे क्या होता है परिवर्तन, मतलब क्या सर के पीछे एक बड़ा ऐसा तेज दिखता है क्या, 4 फुट ऐसे महाप्रभु का जैसा देखते हैं हम, ऐसा कुछ दिखता है क्या, या 4 हाथ हो जाते हैं, कैसा होता परिवर्तन, मतलब क्या परिवर्तन। हमारे मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, किस चीज को हम मूल्य देते हैं संसार में वो परिवर्तन हो जाता है। पहले हम किसी और चीज को मूल्य देते थे, असतो मा सत गमय, पहले असत चीजों को ज्यादा मूल्य देते थे, उसमें ज्यादा समय देते थे, पर अभी शायद हम कुछ और चीजों को मूल्य दे रहे हैं। ये परिवर्तन है, हमारे जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए, मूल्यों में परिवर्तन होना चाहिए, संबंधों में परिवर्तन होना चाहिए। कहाँ हम अपना समय देते हैं, इन चीजों में शायद परिवर्तन दिखना चाहिए, तब हम कह सकते हैं परिवर्तन हुआ है। और क्यों ये होता है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, एक रस का आस्वादन हो रहा है संसार में, पर क्योंकि अब हमने एक ऊंचे रस का आस्वादन किया है तो दूसरे रस का कम हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से ज्ञानम चयत, और भगवान के प्रति ज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे उनके प्रति प्रेम उत्पन्न भी होती है। हम देखते हैं भागवतम ऐसे भी हम शास्त्र को पढ़ सकते हैं, पर जब हम तात्पर्य के साथ पढ़ते हैं, आचार्यों के तात्पर्य के साथ पढ़ते हैं, तो सिद्धांत के साथ हम लीला का श्रवण करते हैं, तो ये दोनों का मिश्रण, कथा और सिद्धांत, दोनों का मिश्रण जो है वो बहुत जरूरी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं लीला कैसी है, भगवान की लीला कैसी है, दूध शक्कर और चावल, इसका अगर कोई खीर बनाए तो खीर बहुत अच्छा होता है, खीर चखने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये भगवान की लीला जो है वो खीर जैसी है, पर खीर में थोड़ा इलायची और थोड़ा कर्पूर डाल दिया जाए तो बहुत ही सुगंधित हो जाता है वो, और सूंघने से ही इच्छा होती है, भूख बढ़ता है और थोड़ा, और पीने में भी स्वादिष्ट हो जाता है, और पीने की जो हमारी जो क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर पहले कम पीते तो अभी ज्यादा पी सकते हैं, क्योंकि वो स्वाद भूख बढ़ाता है और थोड़ा। पर आप सिर्फ इलायची और कर्पूर को खाओगे, ऐसे ही मुंह में डालोगे, कड़वा लगता है वो। कर्पूर को तो एकदम नहीं, इलायची भी थोड़ा चलेगा, पर वो स्वादिष्ट नहीं होता, वो सुगंधित होता है ठीक है, स्वाद नहीं है उसमें। पर वही अगर खीर में डाले उसमें तो फिर स्वाद हो जाता है। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये दोनों का मिश्रण जो है वो बहुत ही रसमय स्वादिष्ट बना देता है। तो और एक सवाल वो पूछते हैं, कहते हैं कि क्या भगवान को अपनी लीला क्या कर रहे मालूम है क्या? वो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये भगवान लीला तो कर रहे हैं तो उनको मालूम रहता है अभी क्या होने वाला है, अभी यशोदा माई आएगी मेरे को बांधेगी, फिर मैं मक्खन चुराऊंगा, फिर बांधने के बाद ये दो दो पेड़ को तोड़ूंगा, उसके बाद ये करूंगा, मतलब पूरा लीला उनको तो पक्का होना चाहिए भगवान है। तो अगर आप हां कहते हो, बोलते हां भगवान को तो मालूम होता सब कुछ, तो फिर मजा नहीं उसमें, ड्रामा जैसा हो जाता है, पहले से मेरे को मालूम है अंतिम में क्या होने वाला, बोरिंग हो जाता है फिर। जिसको पूरा ड्रामा मालूम है ना तो मजा नहीं उसमें, अभी क्या होगा अभी क्या होगा। डायरेक्टर को सब मालूम रहता है ना, मैंने ही डायलॉग डाला है तो मुझे मालूम है क्या होने वाला है, तो जो उसका आनंद है वो नहीं मिलता है। तो अगर हम कहते हैं कि भगवान को मालूम है लीला क्या क्या होने वाला है तो फिर आनंद कैसा हो, मजा नहीं है उसमें। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मालूम होता भगवान को तो बोले भगवान कैसा हो, वेदा हम समतीतानी वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि तभूतानि, भगवान गीता में कहते हैं वर्तमान भविष्य भूत सब मुझे मालूम है सब कुछ, को क्या ऐसा चीज नहीं है जो भगवान को नहीं मालूम। तो अगर हां बोले तो तकलीफ और ना बोले तो तकलीफ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर देते हैं, और उसका उत्तर क्या है, हां और ना। भगवान जानते हैं उनकी शक्ति क्या है क्या होने वाला है, त्रिकालदर्शी, अरे भगवान के भक्त त्रिकालदर्शी होते हैं, नारद मुनि बता देते हैं पिछले जन्म में क्या हुआ अगले जन्म में क्या होने वाला है, व्यास देव ने पहले लिख दिया क्या क्या होने वाला है 5000 साल पहले। पर मालूम होता भी नहीं, और इसीलिए उसमें एक तरह का आतुरता रहती, अभी क्या होगा, पूर्ण रूप से उसका आस्वादन भगवान करते हैं उस लीला में, रहता उसके अंदर वो माधुर्य, उनका जो आस्वाद करने की शक्ति रहती है वो। अब बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ये मालूम भी है नहीं भी मालूम है, ये हमारे लिए नामुमकिन है पर ये भगवान के लिए कोई चीज नामुमकिन, यही उनकी अचिंत्य शक्ति है। कोई भी चीज भगवान की चीज अचिंत्य है, और ये अचिंत्य शक्ति जानने के लिए हमको श्रवण करना चाहिए सिद्धांत के साथ इन लीलाओं को, क्योंकि हम जितना आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या, अपने आप को जानना भगवान को जानना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः भगवान को तत्वतः जानना आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थे। पर ये आत्म साक्षात्कार जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी हो गया है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जिसको जागृत हो गया है, ये भगवान की महिमा का ज्ञान उनके प्रेम को शिथिल कर देता है, इसीलिए भगवान उनको भुला देते हैं वो ज्ञान का, ऐश्वर्य का ज्ञान। उसको कहते हैं योग माया। जहां भगवान अपनी ऐश्वर्य के ज्ञान को भुला देते हैं उस व्यक्ति का, और उन्हें लगता है उन भक्तों को कि ये मेरा बच्चा है। यशोदा माई जब भगवान की मुंह देखी, अंदर मुंह में झांक के देखी, पूर्ण ब्रह्मांड को देखी ब्रह्मांड घाट में, तो ऐश्वर्य भाव आने लगा। तो भगवान बोला अरे अरे फिर मजा नहीं है, अभी ये मेरे को प्रणाम करने लगेगी, डांटेगी नहीं। तो तुरंत उन्होंने मुंह बंद करके योग माया के द्वारा भुला दिया। तो आत्म साक्षात्कार जो है यशोदा माई जैसे भक्तों के लिए बाधा है, क्योंकि वो जीवन की पराकाष्ठा जो है लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त किए हैं। पर हमारे लिए भगवान की महिमा जानना जरूरी है, क्योंकि जितना भगवान की महिमा हम जानेंगे उतना हमारा प्रेम बढ़ेगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा उतना भगवान की के बारे में सुनकर आनंद होगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्या कि जितना हम भगवान के गुणगान श्रद्धा सुनेंगे प्रेम बढ़ता है, और जितना प्रेम बढ़ता है भगवान की छोटी छोटी लीला भी हमें अद्भुत लगती है। जिस व्यक्ति के प्रति आपको प्रेम नहीं है, वो बड़े बड़े काम भी कर दे, आपको लगता है कौन सा बड़ा काम किया, तो कोई भी कर सकता है, प्रेम नहीं है तो। अगर किसी व्यक्ति से आपका प्रेम है, वो कुछ थोड़ा भी कुछ करे तो वाह क्या किया, ये प्रेम का लक्षण है। भगवान कुछ भी करते हैं, छोटी से छोटी बात कुछ करते हैं, तो सारे भक्त उनका गुणगान करते हैं, वाह प्रभु क्या तेरी महिमा, वाह वाह वाह। पर जब भगवान ने कालिया को मारा, कंस ने क्या कहा, अरे वो कोई सांप का, कोई जो पानी का सांप है उसको मारा उसने, बस कुछ नहीं था, ऐसे छोटा सा सांप था ना। ईर्ष्या के कारण वो बड़े बड़े काम भी कर दे फिर भी हम बोलेंगे कौन सा बड़ा काम किया, अरे एक छोटा ढेला को उठा दिया उंगली में, बस पत्थर का ऐसा ढेला था उसको उठा दिया, बस वो बोलते गोवर्धन गोवर्धन कुछ नहीं, छोटा सा ढेला। तो जब प्रेम नहीं है तो बड़े बड़े काम भी छोटे लगते, उसको नीचे कर रहे। और जब प्रेम है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उनकी सेवा करते थे वैयक्तिक रूप से, बहुत प्रेम है प्रभुपाद जी से, तो जो भी वो करते थे प्रभुपाद उसका गुणगान करते थे। तो प्रभुपाद एक बार मौसम्बी खाए और 8 फुट दूर में एक कचरे का डब्बा था और वो दीवाल के पास रखा हुआ था, तो प्रभुपाद ने उसको करके थूके, वो बीज को, वो बीज जाके दीवाल पे लगा और एग्जैक्टली डब्बे में गिरा, तो वो तो पूरा फिदा हो गया उसके पीछे, वाह 25 साल के बाद अभी भी याद करता है क्या प्रभुपाद, ये सीधा जाके टैक करके एकदम बाउंस होके फिर डब्बे में गिरा। बोले शुद्ध भक्त मतलब ऐसा होना चाहिए, प्रेम का लक्षण, जो भी कुछ करे वाह क्या बोले, और प्रेम नहीं है कितना भी कुछ बोले कुछ नहीं। तो वो प्रेम बढ़ाने के लिए ये भगवान की जो लीला है, इन सब का श्रवण करना श्रद्धालु भक्तों के संग में बहुत जरूरी है। तो कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ा, परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में प्रचार करते हो, उन्होंने रशिया में एक 5 लेक्चर का एक बहुत सुंदर श्रृंखला, प्रवचनों की श्रृंखला दी उन्होंने, और उसे एक पुस्तक में छापा गया है उनके शिष्यों ने, और उस पुस्तक का नाम है भक्ति भाव। बहुत सुंदर पुस्तक। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो साधकों के लिए जानना जरूरी है, ऐसे कुछ बातें उन्होंने कही है। चैतन्य चरितामृत के श्लोकों से उसका सार निकालकर किस तरह से श्री महाप्रभु की कृपा से हम जो जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सुंदर से इस पुस्तक में समझाया है। तो मैंने सोचा थोड़ा प्रयास करेंगे आने वाले 2-3 दिनों में इस विषय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक भक्त की भावना कैसी होनी चाहिए? भावना बहुत जरूरी है। हृदय में आपका क्या अनुभव हो रहा है, यह बहुत जरूरी है। अगर हृदय तृप्त है, आनंदित है, तो फिर कोई चिंता नहीं। अगर भक्ति में आए हैं पर हृदय खाली खाली लग रहा है, आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो फिर ज्यादा दिन टिकना बड़ा मुश्किल है भक्ति में। कृष्ण भावनामृत संग है कि नहीं? कृष्ण भावनामृत संग, भावना महत्वपूर्ण। तो वो कहते हैं एक सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 6वां अध्याय 43वां श्लोक। यहां ये पूरा अध्याय ही अद्वैताचार्य की महिमा और अद्वैताचार्य का प्रेम श्री महाप्रभु के प्रति, इसका वर्णन किया गया है। और उसके एक श्लोक के तात्पर्य में रूपा जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ये 43वां श्लोक है। से अभिमान सुखे आपना पासरे कृष्ण दास हो जीवे उपदेश करे। मराठी है। ते असा अभिमान धरतात आणि त्या सुखात स्वतःला विसरून जातात। तुम्ही सर्वजण श्री चैतन्य महाप्रभूचे दास आहात ही शिकवण ते सर्व जीवांना देतात। तुम्हाला समजला का? आम्हाला नाही समजला। तो अद्वैताचार्य यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। से ही अभिमानो सुखे आपना पासारे। मैं भगवान का दास हूं, इस सुख में आपना पासारे वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। और कृष्ण दास हो जीवे उपदेश करे। बोले अरे तुम लोग कृष्ण का दास बनो, ऐसा उपदेश कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेममय सेवा भक्ति परम सुखमय होने के कारण स्वतः भगवान भी एक भक्त का भाव अंगीकार करते हैं, वो अपने आप को भूलकर भगवत भक्ति कैसी करनी चाहिए इसका जो सीख है वो पूरे दुनिया को देते हैं। आप सोचिए, अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु जगतकर्ता मायया यह सृजत्यदह तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। महाविष्णु जिनके रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, ये महाविष्णु अद्वैताचार्य के रूप में आए। भक्तावतारम, और ये महाविष्णु चैतन्य महाप्रभु के सेवक बनना चाहते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं अद्वैताचार्य। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे अद्वैताचार्य। तो यानी गुरु जैसे हैं वो अद्वैताचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैताचार्य को बहुत सम्मान देते थे, गुरु जैसे सम्मान दिया करते थे, पर अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि मैं महाप्रभु की सेवा करूं, और इसलिए हम जानते हैं किस तरह से उन्होंने तरकीब की, उपाय किया, मायावाद बोलने लगे जब महाप्रभु आके डांटे और उन्हें मारे, और तब उन्होंने कीर्तन नाचने लगे, बोले आज तुमने मुझे आपके सेवक के रूप में स्वीकार किया। तो कृष्ण का सेवक, ये जो भावना है, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का दासत्व इतना मधुर है हृदय में, हृदय को इतना मधुर लगता है कि भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूलकर एक दास बनने की इच्छा करते हैं। अद्वैताचार्य तो दूर की बात, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी ये जानना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ भक्त जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी हृदय की भावना क्या है, वो क्या आनंद लेती है जब वो मेरी सेवा में लगती है। वो जानने के लिए साक्षात श्री कृष्ण भक्त बनकर आकर न केवल इसका आनंद लेते हैं, इस आनंद को लूटते हैं, बल्कि इस आनंद को पात्र अपात्र न देखते हुए सबको बांटते हैं। इसीलिए नमो महावदान्याय, इसीलिए महावदान्याय हूं, क्योंकि कृष्ण को भी वो आनंद अनुभव करने की इच्छा होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं, तो हमारे हृदय में ये आनंद इतना क्यों नहीं है? अभी भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर भक्त बनना चाहते हैं, पर हम लोग भक्त बन गए पर इतना आस्वादन क्यों नहीं मिल रहा? तो ये जो प्रवचनों की श्रृंखला है, ये साधकों के लिए उन्होंने दिया, और यहां बताया, हम देखते हैं इस संस्था में कई लोग आए, भक्ति करते रहते हैं, पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे थोड़ी समय जाती है, कई कारणवश कई लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, कई लोग कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, कभी सेवा करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कभी प्रगति कर रहे हैं और कभी ठंडा पड़ जाता है हमारा भक्ति। तो ऐसा क्यों होता है, और ये नहीं होने के लिए कहां हमारी गलती है, और क्या करना चाहिए हमें? जब तक ये भावना हमारे हृदय में नहीं आएगी तो हम किसी और की चीजें अपना हृदय को डाल देंगे। अगर हमारे हृदय में ये भावना अनुभव नहीं कर रहे हैं तो हमारे हृदय में कोई और दूसरी भावनाएं आएंगी, और वो अगर वो आ गई तो ये भावना चली जाएगी। तो ये जो तत्व ज्ञान है इसको बहुत अच्छे से वो, मतलब कृष्ण का हमने हम बन गए, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दीक्षा के समय हमको नाम भी दिया था स्वयं सो दास, कृष्ण दास, गोविंद दासी। तो दास और दासी का नाम तो हो गया, या हमने मन ही मन स्वीकार किया कि हम दासत्व कर रहे हैं, पर जिस जो आनंद दासत्व में है, जो भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूलकर आनंद लेना चाहते हैं, अगर वो आनंद का एक बिंदु भी हमें मिलता तो हम क्यों इसे छोड़कर किसी और चीज के आनंद के पीछे जाते? नहीं, इसका मतलब हमें नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है इसका मतलब शायद हम जो असली में भक्ति होती है वो नहीं कर रहे। भक्ति रसामृत सिंधु, तो सिंधु है, आनंद देना चाहिए। तो ये प्रश्न यहां इनके शुरू हुआ, मैं कृष्ण का दास हूं अगर ये हमने स्वीकार किया तो हमारे हृदय में ये भावना कैसे आनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, इसको लाने कैसे चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हमारा हृदय खाली होता है, कुछ नहीं है, भरा नहीं है, और अतृप्त होता है, तब संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि किसको नहीं है? जिसका हृदय भरा नहीं, अधूरा है, आधा भरा है, या कुछ खाली है पूरा। तो फिर जैसा प्रेम से भरा हो तो बहुत आनंदित रहता है व्यक्ति, पर वो प्रेम खाली हो गया, जिसके प्रति प्रेम था वो व्यक्ति चला गया, खाली हो गया, तो दुख होता है। तो इस संसार में साधारणतः 99.9999% लोग साधारणतः, खास करके पाश्चात्य देश में और भारत में भी लागू है, जो लोग भी कृष्ण भावना में आते हैं, मुख्य कारण इस दुनिया से तंग आके मुक्ति चाहते हैं। तंग आ गया मैं दूसरे संसार से, संसार से तंग आके तब रिलीफ, हा वो पाने के लिए हम यहां आते हैं। तो सारे दूसरे चिंता है उससे मुक्त होने के लिए यहां आते, वाह यहां थोड़ा अच्छा लगता है, हा रिलैक्स। दुर्भाग्यवश भौतिक संसार में जब हम किसी चीज में हृदय को लगाते हैं, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में अपना पूरा हृदय लगाते हैं, पर यह संसार नश्वर होने के कारण और परिवर्तनशील होने के कारण, सब कुछ क्षणभंगुर होने के कारण, या वो व्यक्ति, वो चीज, या वो परिस्थिति चली जाती है, या उससे पहले ही हमारा परिस्थिति बदल जाता है, या भावनाएं बदल जाती है, उस व्यक्ति का व्यवहार कुछ बदल जाता है, तो भावनाएं बदल जाती है, जो सबसे ज्यादा सुख दे रहा था सबसे ज्यादा दुख का कारण वही बन जाता है। तो ये हम देखते हैं साधारणता जो व्यक्ति इस मुक्ति से, चिंता से मुक्त होने के लिए कृष्ण भावना में आया है, अच्छी बात है। और निश्चित रूप से कृष्ण भावना में आने से चिंता से काफी हद तक हम मुक्त हो जाते हैं, पर ये केवल चिंता रहित होना ये उतना प्रेरणादायक चीज नहीं है पूरे जीवन भर के लिए। सिर्फ बहुत अच्छा है, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, पर हृदय चिंता रहित होना जीवन का उद्देश्य नहीं है। प्रेम जो हृदय का स्वाभाविक स्वरूप है, प्रेम से भरा होना चाहिए, भावनाओं से भरी रहनी चाहिए। जब तक वो भावना नहीं है तब तक भले हम उसे बाहर के समस्याओं से मुक्त होने के लिए आएंगे पर टिकेंगे नहीं, क्योंकि हृदय अगर कृष्ण में नहीं है तो वापस हृदय को कहीं ना कहीं और चीजों में लगाएंगे हम, और वो चीजें फिर से हमें आकर्षित करती है, फिर से हम चले जाएंगे। तो हृदय को ये सेवामृत, भगवान के सेवा का जो अमृत है, जो अद्वैताचार्य आस्वादन कर रहे हैं, अपने आप को भूल जाते हैं इस आनंद में कि मैं भगवान हूं, तो ये बहुत जरूरी है, ये भावना को प्राप्त करना। नहीं तो कैसा है, रेगिस्तान से अगर चलते चलते आए, पैर जल रहा है, सर जल रहा है, और बाद में हम एसी रूम में आ गए, भाई थकावट के बाद कोई एसी रूम में जाते तो कैसा लगता है, तो थोड़े समय के लिए ये अच्छा लगता है, पर हृदय अगर खाली रहे तो नहीं होगा। तो चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम, या इस प्रसंग में रामायण भी कहिए, ये सिखाते हैं ये भक्ति भाव है क्या। भक्ति करने में जो आनंद है वो है क्या। इस भौतिक संसार में जो महान भक्त हुए उनकी हृदय की भावनाएं कैसी थी, जो वैकुंठ में भगवान की सेवा करते हैं उन व्यक्तियों के हृदय की भावनाएं कैसी होती हैं, जो गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करते हैं उन व्यक्तियों के हृदय की भावनाएं कैसी होती है। भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में जितने सारे भक्त हुए उनका हृदय भक्ति भाव से भरा हुआ है, और उन्हें अपने स्वरूप में जीवर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, तो दासत्व में जो आनंद है वो आनंद को अनुभव कर रहे हैं, और इसीलिए मुक्ति भी अगर उनको दिया जाए तो कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। भक्तिर सामर्थ सिंधु में एक पूरा अध्याय है, भक्तों से भगवान ने पूछा आपको मुक्ति चाहिए, हनुमान जी भी कहते हैं प्रसिद्ध हनुमद वाक्य, भवबंध छिदे तस्य स्पृहयामि न मुक्तये, भवान प्रभुर अहम दासः इति यत्र विलुप्यते। जब हनुमान जी से पूछा प्रभु रामचंद्र ने, हनुमान तुमने इतना सेवा किया, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांगो क्या चाहिए, तो हनुमान जी कहते हैं भवबंध छिदे तस्य, भवबंधन से मुक्ति स्पृहयामि न मुक्तये, ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए भवबंधन से मुक्ति, अगर भवान प्रभु अहम दासः इति अत्र विलुप्यते, अगर आप मेरे प्रभु हो मैं आपका दास हूं ये भावना अगर चली जाए तो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूं, मैं इस भौतिक संसार में रहने के लिए तैयार हूं, पर जहां आपकी कथा हो रही हो, श्रवणम कीर्तनम हो रहा हो राम का, वहां मैं रहना चाहता हूं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए, बस चाहे वहां रहूं या यहां रहूं मेरे लिए कोई चिंता नहीं। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी को कोई जरूरत नहीं थी वनवास जाने की, लक्ष्मण जी चले। चौदह साल सोए नहीं, चौदह साल तक सोए नहीं वो, उनकी आंखें कमल जैसे लाल एकदम, हमेशा प्रभु रामचंद्र की सेवा में। और जब नासिक में थे पर्णकुटी बनाए पंचवटी में, तब प्रभु रामचंद्र की आंखों में आंसू आई और वो कहने लगे, तू मेरे पिता के समान हो। अरे पिता बच्चे को घर बना के सेटल होने में मदद करता है, अच्छे घर बना के देना पिता का काम है बच्चों के लिए। बोले वो कार्य आपने किया है और अपने लिए घर नहीं बनाए। प्रभु रामचंद्र बोले अपने लिए भी बना लेना एक बेडरूम। बोले नहीं, जिस दिन मैं अपना खुद बनाऊं वो दिन कभी ना आए। जो आपका वही है हमारा, बस मैं आपका दास हूं, मैं यहां बाहर खड़े रहूंगा, पहरा दूंगा, आप कृपया रहिए, निवास कीजिए। भरत का प्रेम देखो, नंदीग्राम में गया था अयोध्या से थोड़ी दूरी में, वहां भरत गुफा है, गुफा कुछ नहीं है, वो छोटा सा एक गड्ढा है बस, चार फीट नीचे एक गड्ढा है, और वहां सोते थे भरत। क्यों? कि बोले मेरे प्रभु जमीन पे लेटे हैं, मैं उनके उनके स्तर पर कैसे लेटूं मैं। वो जमीन पे लेटते हैं, वो जटा धारण किए हैं, वो वलकल धारण किए, तो मैं भी वही धारण करूंगा, मैं उनसे अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता हूं, वो प्रभु है, मैं उनका दास हूं, और वो ठंडे जमीन पर लेटे हैं जंगल में, तो मैं जमीन पे नहीं, उससे भी नीचे। और वहां रहे वो, और पादुका को रखकर उसकी सेवा करते रहे और राह देख रहे थे। बोले एक क्षण भी ले देर हुआ तो मैं जलती चिता में प्रवेश करूंगा। सबसे बड़ी चिंता राम को यह थी कि 14 साल के बाद आना ही है, नहीं तो बेचारा भरत का तो छलांग मार देगा जलती चिता में। जवाबदारी ली, प्रभु रामचंद्र के अयोध्या चलाने की जवाबदारी ली, पर उसका जो सुविधाएं हैं राजा की जवाबदारी भरत ने स्वीकार किया सेवक के रूप में, पर राजा की जो सुविधाएं मिलती है उस सुविधाएं को कुछ भी नहीं लिया। सुविधाएं नहीं लिया तो जवाबदारी तुम ही लो, कर सकते है कोई, कह सकता है। सुविधा भी नहीं लिया तो जवाबदारी भी नहीं लिया। बोले नहीं जवाबदारी लूंगा क्योंकि आपको प्रसन्न करूंगा, पर ये सुविधाएं मुझे नहीं चाहिए, मैं नंदीग्राम में रहूंगा। शत्रुघ्न, जब शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ रहे, लक्ष्मण जी प्रभु रामचंद्र के साथ, शत्रुघ्न हमेशा भरत। शत्रुघ्न को लक्ष्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी भगवत सेवा कर रहे थे पर शत्रुघ्न भागवत सेवा में लगे, भक्तों की सेवा में लगे। जिस प्रकार परछाई के समान प्रभु रामचंद्र की सेवा लक्ष्मण जी करते थे, उस तरह परछाई के समान भरत जी की सेवा शत्रुघ्न करते थे। और 14 साल के बाद प्रभु रामचंद्र आए, भरत जी को फिर युवराज बनाया गया क्योंकि लक्ष्मण जी को इच्छा नहीं थी, बोले मैं आपका सेवक हूं, तो भरत जी को युवराज बनाया गया। फिर कुछ ऋषि मुनि आए और कहने लगे कि अभी लवणासुर का बहुत समस्या बढ़ गया है मथुरा के आसपास, आज जो मथुरा है वहां। तो प्रभु रामचंद्र से निवेदन किया कि किसी को आप भेजो। तो भरत जाने के लिए तैयार हो गए, युवराज थे, जाने के लिए तैयार हो गए, तो तुरंत शत्रुघ्न ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी सोच रहे थे बेचारे भरत 14 साल के विरह के बाद अब प्रभु रामचंद्र का उनका संग मिला है, और अभी वो लवणासुर को वध करने जाएंगे तो उनको फिर से वो विरह का अनुभव करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करने दूंगा। तो भरत को बोले कि आप यहां रहो, मैं जाता हूं लवणासुर का वध करता हूं। और लवणासुर का वध करने के बाद वहीं निवास करने लगे वो कई हजारों साल तक, आए ही नहीं फिर वापस। तो पहले भरत जी के साथ सेवा, बाद में विरह में सेवा, ताकि भरत जी प्रभु रामचंद्र की अच्छी तरह से दर्शन कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। ये कौन है ये सब? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, भगवान के विस्तृत रूप है वासुदेव, जो प्रभु रामचंद्र के रूप में आए। और ये सारे भाई सीता माता सहित प्रभु रामचंद्र की सेवा में, इन्होंने दिखाया कि सेवा कितना आनंदमय है और उस सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर एक दास के रूप में सेवा करने का जो आनंद है, न केवल उसका आस्वादन कर रहे हैं पर पूरे दुनिया को हमेशा के लिए दिखा रहे हैं। बोले इसमें जो आनंद है वो भगवत्ता में नहीं है, भोक्ता बनने में उतना आनंद नहीं है जितना सेवा में आनंद है। प्रवचन तो हम बड़े बड़े कह लेते हैं पर हमारे अंदर ये आनंद है ही नहीं, इसीलिए हम टिक नहीं पाते भगवान की सेवा में। इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। तो वो ही चीज को यहां संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं कि ये विषय साधकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो बुद्धिमान हैं वो सोचते हैं कि मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं पर भविष्य में 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मेरा भविष्य क्या है, ऐसा भक्ति में मेरा हृदय कैसा होगा, क्या प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा, मैं तो देख तो नहीं रहा हूं। और इसीलिए उतना उत्साह नहीं रहता, प्रेरणा नहीं मिलता उनको, और धीरे 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 कहीं ना कहीं तो हृदय को डालना पड़ता है। प्रेम का भूखा है व्यक्ति, भगवत प्रेम नहीं तो किसी और के चली, वो भगवत प्रेम की भावना नहीं है तो किसी और भावनाओं के पीछे जरूरी है वो। तो फिर देवामृत महाराज एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, बोले हमारी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम भगवान को मानते हैं, बुद्धि से मानते हैं, मैं कृष्ण में विश्वास करता हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, बुद्धि के स्तर पर हम भगवान को मानते हैं। पर अगर हम भगवान के सेवक हैं तो सेवा का आनंद अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हृदय से सेवा नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हृदय नहीं डाले हैं भगवान के चरणों में, हृदय नहीं डाले अपने सेवा में, इसीलिए हृदय को कहीं ना कहीं तो डालना पड़ता है, क्योंकि केवल बुद्धि के स्तर पर हमने स्वीकार किया है कि मैं भगवान को मानता हूं। उन्होंने पूरे रशिया में 5,000 लोग बैठे थे, बड़ा फेस्टिवल होता है रशिया, एनुअल फेस्टिवल, वार्षिक उत्सव, पूरे रशिया में जितने लोग है सब, यूक्रेन के तो अलग अलग सब प्रकार सब जगह से लोग आते। तो उन्होंने कहा, सबको कहने को कहा, जोर से बोलिए मैं कृष्ण को मानता हूं। तो सब लोगों ने, 5,000 लोगों ने जोर से बोला, मैं कृष्ण को मानता हूं या मानती हूं, 3 बार बोलिए। सब ने 3 बार बोला। फिर पूछा, सब संतुष्ट है, मैं कृष्ण को मानता हूं, आप संतुष्ट है? बोले नहीं, संतुष्ट नहीं है। कृष्ण को केवल मानने से नहीं होगा, जब तक उनकी सेवा करके, हृदय से सेवा करके उस सेवा का आनंद नहीं ले रहे, तब तक केवल बुद्धि से मान के कोई लाभ नहीं है। हमारे मंदिर में एक भक्त आते हैं, हमेशा मुझे मिलते हैं वो सुबह सुबह आके। उन्होंने एक बार कहा, हम उनको मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। बोले हम उनको मानते हैं पर उनकी नहीं मानते, यानी उन्होंने जो आज्ञा दिया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो नहीं, कृष्ण को मानते हैं। तो उन्होंने बताया ये कृष्ण, कृष्ण भावनामृत जो चीज है भक्ति, ये बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है। जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे, हृदय से इसका आस्वादन नहीं करेंगे, बोले तब तक ये सत्य जो है केवल बुद्धि के स्तर पर रहेगी और इसमें हृदय कहीं और रहेगा, और स्वाभाविक रूप से हृदय कहीं और जाएगा। ये कोई बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है, ये अनुभव करने वाली बात है, ये आस्वादन करने वाली बात है। और पूर्ण रूप से कृष्णमय नारायण परायण, जब तक हम कृष्णमय नहीं हो जाते हृदय से, तब तक क्या है वो, एक तो है नारायण परायण या शिष्णोदर परायण, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, या नारायण परायण या कृष्ण शिष्णोदर परायण या माया परायण, जो भी, ये दोनों परायण होना बहुत जरूरी है। परायण मतलब हृदय से भर के रखना, हृदय खाली नहीं रह सकता। तो जब तक हम कृष्ण की प्रेममयी सेवा में नहीं लगेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक केवल बुद्धि के स्तर पर रहेंगे। बुद्धि तो कृष्ण में रहेगा, हृदय कहीं और जाएगा, और धीरे धीरे हृदय जब वो भर जाएगा तो बुद्धि से भी वो चला जाएगा और हम भी चले जाएंगे भक्ति से। तो केवल बुद्धि से जानना हृदय को संतुष्ट नहीं करेगा, हमें एक ऐसा संबंध और उस संबंध में कार्यरत होना चाहिए। दूसरा ये सवाल उठता है, क्यों एक व्यक्ति हमेशा भावना के पीछे पागल है, क्यों? भावुकता अलग है, भावनाएं अलग है, भावनाएं स्वाभाविक है, अनुभव करना कृष्ण भक्ति भाव, ये भावों को अनुभव करना, प्रेम अनुभव करना, ये स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि कृष्ण भगवान है और कृष्ण जो है एक व्यक्ति है, उनका हृदय है और वो भी रस का आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान में और परम सत्य में अंतर है। भगवान की परिभाषा क्या है? अंग्रेजी में गॉड, GOD। तो एक व्यक्ति ने कहा, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है पर वो करते हैं ये तीन चीज, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीन चीज करते हैं, सृष्टि करना, स्थिति रखना और सब कुछ नष्ट करना, ये भगवान काम करते हैं। पर ये भौतिक संसार के लिए ये सब काम करते हैं, आध्यात्मिक संसार में सृष्टि विष्टि करने की कोई जरूरत नहीं, नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं, वहां केवल आनंद लेते हैं। भौतिक संसार तो जेल है, जेल में नहीं आते भगवान, इसमें आनंद नहीं लेते सब करने में, सिर्फ भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आते बस, नहीं तो सृष्टि करने के लिए बहुत सारे लोग को भेज सकते हो। तो परम सत्य में और भगवान में अंतर है। परम सत्य जो है, सत्यम परम धीमहि, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उनका धाम जो है वहां सुंदर शाश्वत लीलाएं चल रही हैं, शाश्वत लीलाएं, और वो आस्वादन कर रहे हैं रासलीला। तो क्योंकि हम भगवान के एक अंश है, हम भी भावना भावनाओं से भरे हुए, पर हमारे में भगवान में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि भगवान उनकी सारी भावनाओं को पूर्ण रूप से आस्वादन कर सकते हैं, आस्वादन करने की शक्ति है उनकी, जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति उनके पास है। भगवान की अनंत इच्छाएं, असीमित इच्छाएं, और उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की उनके पास शक्ति भी है। हमारी एक तो इच्छाएं हैं और वो इच्छा भी उल्टी सीधी इच्छाएं, शुद्ध इच्छाएं नहीं है, और उस इच्छाओं को पूर्ण करने की ताकत नहीं है हमारे पास, न धन है, धन भी है तो, या स्वास्थ्य नहीं है, या स्वास्थ्य है तो सौलभ्य नहीं है, असंतुष्टि हमेशा, सारी इच्छाओं को हम कभी पूर्ण नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं कर सकते। पर क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इच्छा करने हमारा स्वाभाविक ये स्वरूप है हमारा, क्योंकि भगवान एक इच्छा व्यक्ति हैं और उनके अंदर भावनात्मक व्यक्ति है, वो हमेशा रस का आस्वादन करने की इच्छा रखते हैं, रस बिहारी, रसराज। तो ये जो भगवान की शक्ति, उसको कहते हैं स्वराज्य लक्ष्मी। स्वराज्य लक्ष्मी का मतलब उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति उनके पास है, पर हम इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते, और दुर्भाग्यवश इस इच्छाओं को लेके जब हम भौतिक संसार में आते हैं और अपने हृदय को कोई इच्छाओं को पूर्ण करने में, इस संसार की चीजों में लगाते हैं, कोई वस्तु से, कोई परिस्थिति से, कोई व्यक्ति से, तो इसका अनुभव कैसा होता है? वो दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता ऐसा हो जाता है। कोई तो इच्छा हुआ और इच्छा को तृप्त करने गए, एक तो मिलता नहीं हो, मिल गया तो ऐसा लगता है कि वाह अभी मैं हमेशा के लिए संतुष्ट रहूंगा, नहीं, वही चीज चार दिन के बाद वो वही आनंद नहीं देता, वो शाश्वत नहीं है। और इस इच्छा से, ऐसी इच्छा कर करके उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगाने के बाद, ये ऐसा है जैसे एक एक हिरण प्यास, और प्यासा जो हिरण है प्यास के मारे भटकते भटकते जंगल से आके रेगिस्तान में मृग तृष्णा को देखता है, और पूरा ताकत लगाकर जाता है, मर रहा है, प्राण जा रहा है, तो थोड़ा जो ताकत है पूरा ताकत लगाकर उस पानी पीने जाता है और छलांग मारता है उस रेगिस्तान में, ये समझ करके अभी पानी मिलेगा मुझे, पर पानी के बदले और थोड़ा गर्म रेती मुंह में जाता है। इस तरह से बहुत सारी इच्छाओं को हम रख के आए हैं और उस इच्छा को पूर्ण करने का जीवन भर, और कभी कभी कई जीवनों तक, कई जीवन हमने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगाया, पर ये सारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती, इच्छाओं की श्रृंखला बढ़ती जाती है, एक इच्छा को तृप्त करने जाए और 50 इच्छाएं आती हैं, अतृप्त होने के बाद भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो चली जाएगी हमारे हाथ से। तो इस तरह से इसीलिए हम देखते हैं ये फिल्मों में भी, पहला आधा इंटरवल से पहले पेड़ के चारों ओर घूमते रहते दोनों, और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाना है, हम तुम मिले बहुत अच्छा हो गया, फिर इंटरवल के बाद समस्या शुरू होता है, कहां गई, पहले तो कहता है कि मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा तेरे लिए, पर इंटरवल के बाद बहुत सारी चीजें टूटना शुरू हो जाता है। और ऐसी गाना है ज्यादा है पाश्चात्य देश में भी, देखो ब्लूज मतलब रोते हुए गाना, कहां था वो, क्या मेरा इच्छा था, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। ये जो गाना ये ज्यादा है, क्योंकि निश्चित रूप से वो परिवर्तन हो जाता है इस परिस्थिति में। जो स्त्रियां हैं देवामृत स्वामी बतलाते हैं, इन भावनाओं को प्रकट करती है, थोड़ा खुल के प्रकट करती है, गुस्सा है तो गुस्सा, थोड़ा भावुक होते हैं वो थोड़ा ज्यादा। और पुरुष लोग जो है प्रकट नहीं करते, अपने आप को दिखाना चाहते कि मैं बड़ा गंभीर हूं, स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, पर अंदर ही अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, कहीं और निकलता है वो, एक जगह नहीं निकला तो कहीं और निकलेगा, बॉस के ऊपर नहीं निकला तो दरवाजा के ऊपर निकलेगा, घर में आके या टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, या पत्नी के ऊपर, या बच्चों के ऊपर। भावनाएं हैं, भावनाओं को छिपा नहीं सकते, इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भावनाएं हैं। तो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ये स्वाभाविक है, पर इस दुनिया में मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, इस आशाओं को निराशा में परिवर्तित हो जाती है, सारे ज्ञान अज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। और इसीलिए सबसे पहले अगर कृष्ण भावना को प्राप्त करना है ना, तो इन भावनाओं के विरुद्ध जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को पहचान लो आप। सबसे बड़े शत्रु कौन है? तीन शत्रु बताए गए गीता में, वीत राग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। भगवान कहते हैं वीत, वीत मतलब छोड़ दो, राग भय क्रोध, मनमया तन्मय कृष्णमय होना है, माम उपाश्रिता पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेना है। तो पूता, पूता मतलब शुद्ध हो जाओ पहले, ये शत्रुओं को हटा दो, ये तीन शत्रु हैं राग भय और क्रोध। राग मतलब आसक्ति, हमें अज्ञान के कारण मैं समझता हूं कि मैं शरीर हूं और ये शरीर से जुड़ी हुई चीजें या व्यक्ति या कोई चीजें ये मुझे अपने हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट और आनंद देने की क्षमता रखती है, और उसको हम लोग पकड़ के रखते हैं। पर ये हमें संतुष्ट नहीं कर पाता और अंत में सब चले जाता है, हमेशा चिंता रखते वक्त चिंता, और खो गया तो दुख। तो हमेशा ये भावनाओं को भौतिक चीजों में लगाया तो वो शुद्ध नहीं होने के कारण, त्रिगुणात्मक होने के कारण, तीन गुणों से बने हुए चीजों पे लगाया तो चला जाता है। अच्छा ये हो गया राग, इसीलिए जिसको छोड़ दो, भौतिक संसार से आसक्ति छोड़ दो। फिर भय, भय यानी यहां हमने मार खाया, संबंध रखा तो संबंध नष्ट हो जा रहा है, तो फिर जब हमें बताया गया कि आध्यात्मिक संसार में भगवान का भी स्वरूप है, तुम्हारा भी स्वरूप है, वहां भी सेवा करना है, नको बाबा नको माला, इसीलिए मग्न हो जाना, क्या बोलते हैं, लीन हो जाना, निर्विशेषवाद सबसे बड़ा शत्रु है। निर्विशेष मतलब जो तंग आ गया है भय के कारण, भय फिर से और एक शरीर, फिर से वही दुख, ये दूध का जला बोलते हैं ना ऐसा, इस भौतिक संसार में मैंने हृदय डाला और वो हृदय से चोट ही चोट लगी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सोना चाहता हूं, और सोना मतलब क्या, परमानेंटली सोना, मुक्ति, भगवान में लीन हो जाना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अस्तित्व नहीं है, तो कोई इच्छाएं नहीं है। भय, व्यक्तित्व का भय, भगवान एक व्यक्ति है, अरे बाप रे, नहीं चाहिए। मैं एक व्यक्ति रहूंगा हमेशा के लिए, नहीं चाहिए। निर्विशेष। और हजारों अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को सुनकर पूर्ण रूप से निराश होकर और तंग आकर शून्यवाद, सब शून्य, ये तीन सबसे बड़े शत्रु हैं भक्ति के। इसीलिए हम प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी, चैतन्य महाप्रभु का संदेश क्या है? चैतन्य चरित अमृत। जो चैतन्य जीव है उसका चरित्र अमृत अवस्था में, मुक्ति के बाद असली भक्ति शुरू होती है भगवत धाम में। तो गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सबसे बड़ा खतरा निर्विशेषवाद और शून्यवाद। निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं कि सब कुछ है, शून्यवाद मतलब सब कुछ शून्य है। बुद्धिस्ट, बौद्ध जो दर्शन शून्यवाद की ओर है, इच्छा रहित हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ, इच्छा को नष्ट कर डालो। पर इच्छा रहित नहीं हो सकते हम। आत्मा का स्वरूप है इच्छा करना, भावनाओं का अनुभव करना, रस का आस्वादन करना, क्योंकि हमारे मूल स्रोत कृष्ण हैं, वो एक व्यक्ति हैं, उनकी भावनाएं हैं, वो रसराज हैं, तो हम भी वैसे ही हैं। एक निराशजनक सिद्धांत है ये बौद्ध सिद्धांत, भगवान नहीं है, ये नहीं है। उनको कितना गुस्सा है देखिए, विग्रह की जो सेवा करते हैं उनके ऊपर। अब बौद्धवादियों के उसमें जो थोड़ा विकृत बौद्धवाद जो है, उन लोगों का आप दीवालों पर उनका एक लिखिए, जो लिखते हैं वो लोग देखिए, घृणा है उनको, क्रोध नजर आता है उनके वाणी उस वचन में, क्रोध और निराश। ऐसे सिद्धांत है ये। और निर्विशेषवाद, शंकराचार्य, भय नहीं चाहिए, फिर से मुझे एक स्वरूप नष्ट करना है, मैं लीन हो जाऊंगा, अपने अस्तित्व को मैं खो बैठूंगा। तो व्यक्तित्व नहीं चाहिए, और वैरायटी, क्या बोलते हैं, विविधता। व्यक्तित्व नहीं चाहिए और विविधता नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में व्यक्तित्व मतलब तकलीफ, विविधता मतलब विविध प्रकार की तकलीफ बाद में। तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सब नष्ट करके एक हो जाना। और दोनों जो हैं मनगढ़ंत सिद्धांत है, इसमें कोई तत्व नहीं है। अब सवाल उठता है, तुम करे क्या, फिर करना क्या है फिर? तो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बताया क्या करना है। श्री गौरांग गुणान वर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ पापो ताप निकृंतनौ तनुभृताम गोविंद गानामृतैहि आनंदाम्बुधि वर्धनैक निपुणौ कैवल्य निस्तारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। हमारे जो आचार्य हैं, खास करके महाप्रभु के अनुयायी, उन्होंने हमें दिखाया है कि कृष्ण भावनामृत जो है, ये कोई एक देश के लिए या कोई एक प्रकार के जाति के लिए, कोई एक प्रकार के लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। श्री गौरांग गुण अनुवर्णन विधौ, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया इन्होंने श्रद्धा समृद्ध्यान्वित हो, और हमारी श्रद्धा को बढ़ाते हैं भगवान के अस्तित्व में और प्रेममयी सेवा में। कैसे? गोविंद गानामृतई ही, उन्होंने भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को प्रकट किया है और उस लीलाओं का सिद्धांत जो है हमें बताया है। कितना स्वादिष्ट है ये लीला, एक एक लीला को अगर अंदर जाके देखोगे इसका आस्वादन कर सकते हो। गोविंद गानामृत ही, और पापो ताप निकृम तनो तनुभृताम, और ये केवल सुनने से करोड़ों जन्मों के पाप जो है धुल जाते हैं अपने आप कृष्ण कथा सुनने से। और आनंद अम्बुधि वर्धनैक निपुण, उन्होंने हमें एक ऐसा सेवा दिया है, 64 अलग अलग भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत इत्यादि में किस तरह से भगवान की सेवा, सेवक का मतलब क्या, और वो सेवा का आनंद है क्या, ये बहुत अच्छे तरह से समझाया है किस। और उन्होंने एक तरीका दिया है, हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे वाणी और हमारे शरीर, इसको सेवा में कैसे लगाना चाहिए। केवल मानना कि मैं कृष्ण दास हूं नहीं चलेगा, हमें सेवा में लगना चाहिए, मन को लगाना चाहिए, वाणी को लगाना चाहिए, कर्मणा मनसा वाचा, इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, निखिलश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त सउच्यते। जो हरि के दासत्व में मन वाणी और इंद्रियों यानी शरीर को लगा दिया वो जीवन मुक्त बन गया। तो साधारणतः हम लोग भक्त का मतलब क्या समझते हैं कि हम लोगों ने जैसा ऑफिस में जाके टिक मार मारते ना अटेंडेंस, चलो अटेंडेंस लग गया भाई, रजिस्टर में अटेंडेंस मार के अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो साधारणतः हम जब अपने आप को कृष्ण भक्त मानते हैं हमको लगता है कि भाई मंदिर को एक बार जाना चाहिए, प्रभु आ गया मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपसे विश्वास करता हूं, बस हफ्ते में एक बार मंदिर, दिन में 2 मिनट के लिए मैंने अगरबत्ती दिखा दिया, हो गया, अभी प्रभु आप बैठो अपने जगह पे, मैं जा रहा हूं, अभी मैं अपने हृदय को पूर्ण रूप से दबाऊंगा दुनिया में, पर मैं मानता हूं आपको, हाँ मत बोलना कि नहीं मानता हूं, आपको अगरबत्ती लिखाएगी ना मैं घर से बाहर नहीं निकलता। साधारणतः एक छोटा सा अंश हमारा भक्ति है, ये बताने के लिए अपने आप को दुनिया को कि मैं भगवान को मानता हूं। पर गीता में भगवान क्या कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम्। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ सब कुछ मुझे अर्पण करो, यानी 24 घंटे जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो, हृदय डाल के करो, ये सेवा है ये समझ के करो। और ये कला हमें गुरु सिखाते हैं। गुरु के बिना हमको क्या लगता है, हम भक्त हैं ना, भगवान कौन है नहीं मालूम, हम कौन है नहीं मालूम, थोड़ा पूजा कर दिया, एक धार्मिक लोगों की समझ यही है कि मैं पूजा करता हूं और जन्माष्टमी में मंदिर जाता हूं, या हफ्ते में एक बार जाता हूं, हर मंगलवार को जाता हूं, हर रविवार को जाता हूं, अटेंडेंस दे के आता हूं, भक्ति बैठता हूं, थोड़ा पूजा भी करता हूं, कुछ भोग भी लगा के आता हूं। तो 2 मिनट की भक्ति और पूरा हृदय कहां डाल रहे हो, 24 घंटे कहीं और, या हफ्ते में एक दिन भगवान का सेवा, 24 घंटे हमारा हृदय कहीं और डाल रहे हैं हम लोग, इसीलिए उसमें आनंद नहीं है, उसमें रस नहीं है, और रस नहीं होने के कारण जहां रस मिलेगा वहां खींचे जाएंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए आचार्यों ने हमें बहुत सुंदर से एक तरीका बतलाया है, नियम के तरीके, क्या क्या मत करो, क्या क्या करो, न केवल क्या क्या करो, किस तरह से करना, हर एक चीज जो भी कर रहे हैं, अपने अपने जीवन में कुछ तो अपने हृदय डाल के किया होगा ना। किसी की इच्छा है, मेरा एक घर बनाना है बस, जिंदगी में एक लक्ष्य है, एक अच्छा घर बनाना है मेरा। या किसी को और कोई तो इच्छा है, मेरा एक एक बिजनेस शुरू करना है, या कुछ तो एक चीज करना है, ये मतलब ये कोर्स करना है मुझे, ये डिग्री मुझे प्राप्त करना है। जिस जगह में भी आपने अपना हृदय डालकर किया है, उस समय आप कैसे करते हो देखो उस कार्य को। और जहां करना है अभी क्या किसी ने बोल दिया इसीलिए मैं कर रहा हूं, उस कार्य में और जहां आपका हृदय है उस कार्य को आप करते हो, ये दोनों का अंतर देखो आप। ये संबंध, इस व्यक्ति के साथ मेरे को संबंध जोड़ना है, पूरा हृदय डाल के किसी ना किसी तरह से योजना बना के किस तरह से मैं इस व्यक्ति के साथ संबंध बढ़ाऊं, पूरा हृदय, पूरा कर्मणा मनसा वाचा। हम सब ने किसी ना किसी चीज में तो डाला होगा अपना हृदय, उस समय का अनुभव देखो। दुर्भाग्यवश इस संसार की चीजों में डालते हैं तो मार भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग निर्णय कर दिया अभी किसी में हृदय नहीं डालने का, उस नाम के वास्ते थोड़ा करने बस, जहां भी हृदय डाला मार खाया। हृदय टूट गया, दिल टूट गया, जहां भी मैंने दिल डाला दिल टूट गया, इसीलिए अभी मैं दिल किसी को नहीं दूंगा, खुद को भी नहीं, उसको साइड में रख दूंगा। शून्यवाद या निर्विशेषवाद, पूरा ऐसे गलत जगह में डालते हैं और डालने से तंग आने के बाद कहीं नहीं डालेंगे। तो पहले आसक्ति कर्मवाद कर्मकांड, उसमें तंग आके निर्विशेष या शून्यवाद, भोगवाद या फिर क्या बोलते हैं निर्विशेषवाद या शून्यवाद, दोनों एक्सट्रीम। गलत जगह पे डाले मार खाया और इसीलिए कहीं नहीं डालने का भी। तो ये दोनों से बचकर जहां डालना है, मदगता माम उपाश्रिता मच्चिता मदगत प्राणा, तो ये उन्होंने हमें दिया है। और कल हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो भावनाएं हैं ये सही जगह पे जहां भगवान पे लगाने का तरीका क्या है, कहां से शुरुआत करना है, ताकि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हमारी भावना कैसी होगी, हृदय कैसा भरा रहेगा, संतुष्ट रहेगा, आनंदित रहेंगे। अगर हम चाहते हैं तो तैयारी अभी से शुरू करना है, और उसकी शुरुआत कहां से होती है और कैसे आगे बढ़ना है, क्या नहीं करना है और क्या हमेशा करना है, बहुत सुंदर से उदाहरण के साथ बताए हैं। कल हम उनका चर्चा करेंगे, 7 बजे शुरू करेंगे और 9 बजे खत्म करेंगे। सुंदर अभी श्री निताय गौर चंद्र की प्रार्थना और तत्पश्चात सबके लिए प्रसाद। हरे कृष्णा, श्री निताय गौर चंद्र की जय। श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।